الحمد لله وكفى وسلم على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو ہم پیج نمبر 598 کے اوپر پڑھ رہے تھے سورہ مزمل کی تفسیر تعارف و مسائل سے. تو اس میں جو ٹاپک چل رہا تھا پچھلی کلاس میں وہ قیام اللیل کی فرضیت منسوخ ہو گئی. تو اس سے پچھلے والا پیج 597 پر تھا کہ شروع میں جو اللہ تعالیٰ نے فرضیت مسلمانوں پر رکھی تھی پھر بعد میں اس کو ایبروگیٹ کر دیا تھا، منسوخ کر دیا تھا. تو شروع میں پھر رکھا کیوں تھا اگر بعد میں ختم کر دینا تھا؟ عام طور پہ یہ سوال کرتے ہیں نا لوگ، بھئی رکھا ہی کیوں تھا، بھئی ایسا کہا ہی کیوں تھا جب بعد میں اس کو چینج کر دینا تھا. تو بھئی اس میں وجہ ہوتی ہے، شروع میں حالات مختلف ہوتے ہیں، شروع میں یعنی تقاضے اور ضروریات مختلف ہوتی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ جب وقت بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، انسان بدل جاتے ہیں، رائٹ؟ صرف حالات تو نہیں بدلتے نا، جو بندہ ہوتا ہے وہ بھی تو بدلتا ہے نا. تو جب بندہ بدل گیا تو اب احکام بھی بدلنے چاہیے، اب اس کے تقاضے بھی بدلنے چاہیے. مثال کے طور پر ایک مریض ہوتا ہے، وہ جب ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو اس کو امیڈیٹلی جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں، سی پی آر کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو جو ہے وہ ڈرپ کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو بہت سارے یعنی امیڈیٹ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن جب آہستہ آہستہ اس کی طبیعت سنبھل جاتی ہے تو پھر ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اب جو ہے وہ اینٹی بایوٹکس کے اوپر اس کو اسٹارٹ کرا دیتے ہیں اگر انفیکشن لے کر کے آیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اینٹی بایوٹکس بھی جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد دوسری نارمل میڈیسنس کے اوپر اس کا. تو یہ ایک نارمل مشاہدہ ہے ہمارے سامنے، ہر انسان تقریباً اس کا مشاہدہ کرتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی تو صرف علم دینے والے تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کا تزکیہ بھی تو کرتے ہیں نا، انسان کی یعنی اس کے حالات کو جو ہے وہ سدھارتے بھی تو ہیں نا. تو اب اس میں بھی تو انسان کے احوال جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں، تو اس کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی بدلتے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ صرف ایک انڈیویجول انسان کے ساتھ تو نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے. جیسے کہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے تو ڈاکٹر کا تعلق تو صرف اپنے ایک انڈیویجول مریض کے ساتھ ہوتا ہے نا، یعنی انڈیویجول قسم کا ایک کنیکشن ہوتا ہے، ایک رابطہ ہوتا ہے، صحیح ہے. لیکن جو ہیلتھ منسٹری ہوتی ہے، کسی ملک کی گورنمنٹ کے اندر ایک ہیلتھ منسٹری ہوتی ہے نا، تو ہیلتھ منسٹری نے تو پورے ملک کے لوگوں کی صحت کا خیال کرنا ہوتا ہے. تو ہیلتھ منسٹری نے تو پھر یعنی ایسے عمومی لاز پاس کرنے ہوتے ہیں نا جو کہ ہر ایک کے لیے اپلیکیبل ہوں کسی نہ کسی درجے میں، اور پھر ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ ان عمومی لاز کو خصوصی مریضوں کے اوپر پھر ان کے احوال کے حساب سے اپلائی کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تو، اللہ تعالیٰ کے پاس تو یہ पूरी इंसानियत की रूहानी हेल्थ इंडस्ट्री है अल्लाह ताला के कंट्रोल में, ठीक है। तो अल्लाह ताला के जो लॉज होते हैं वो उमूमी नौइयत के होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन ईमान वालों के ऊपर, जो बिल्कुल शुरू के ज़माने के थे, तो उनको ये जो सख्त किस्म की एक यानी मुशक्क़त सुपुर्द की गई थी, तो इसकी वजह इन्होंने लिखी थी कि इल्म अज़ली के मुताबिक जब ये हिकमत, यानी हिकमत क्या थी, रियाजत व मेहनत के खूबर खूगर बनाने की पूरी हो गई, ये असल में हिकमत थी अल्लाह ताला की। कि बिल्कुल शुरू के जो लोग हैं ना, उनको ज्यादा टफ बनाना होता है, उन्होंने आगे जाकर के फिर इस काम को आगे लोगों के अंदर चलाना होता है, ठीक है। तो जो पहला बैच होता है ना, उसके लिए ज्यादा टफ मामला होता है। तो ये पहले बैच के लोग थे ना, तो ये फर्ज कयामुल्लैल फिर उसके बाद मनसूख कर दिया गया। और हजरत इब्ने अब्बास की रिवायत के मुताबिक ये भी हो सकता है कि आयात मस्कूरा से सिर्फ तूले क्याम की फर्जियत मनसूख हुई हो, असल नमाज तहज्जुद का फर्ज बदस्तूर रहा हो। फिर शबे मेराज में 5 नमाजों की फर्जियत के बाद नमाज तहज्जुद की फर्जियत मनसूख हुई हो। तो 5 नमाजें ये तो मेराज में फर्ज हुई थी, और मेराज का मामला कब पेश आया था, 10 हिजरी के 10 हिजरी में पेश आया, सॉरी 10 नबवी में पेश आया था ना, जब हजरत अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया था, हजरत खदीजतुल कुबरा का भी इंतकाल हो गया था। नबी अलैहि सलाम बहुत मगमूम थे, आमुल हुजुन कहते हैं, यानी गम का साल था वो। और फिर उसके बाद आप ताइफ गए थे, और ताइफ से भी कितना बुरा रिस्पॉन्स मिला था, तो गम में और ज्यादा शदीद इजाफा हो गया था। ताइफ में जो आप ने बाग में बैठ करके दुआ मांगी थी, क्या ही अजीब दुआ है, अगर किसी को पढ़ने का शौक हो रहा है या बल्कि सीखना चाहिए उस दुआ को, और मांगते भी रहना चाहिए अल्लाह ताला से, खुसूसन जिनके हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो और उनको कहीं से सपोर्ट ना मिल रही हो। लोग कहते हैं ना कि जी हम तो नेक बनना चाहते हैं, हम गुनाहों से बचना चाहते हैं, लेकिन घर में कोई हमें सपोर्ट नहीं करता, ना मेरा शौहर मुझे सपोर्ट करता है, ना मेरे ससुराल वाले मुझे सपोर्ट करते हैं, ना कोई और सपोर्ट करता है, ठीक है। तो एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है, मैं कैसे अपने बच्चों को दीन के रास्ते की ओर पढ़ लाऊं। तो इसके लिए सबसे पहला काम तो दुआ करना होता है। तो बेहतरीन दुआ इसके लिए कौन सी है, यही ताइफ वाली दुआ है, बेहतरीन दुआ को, यानी क्या है वो सूरत है, नहीं पिछली ही तो सूरत है, सूरह जिन, राइट। सूरह जिन की तफसीर के अंदर ये दुआ मौजूद है। मारिफुल कुरान अगर आपके सामने है, जो होनी चाहिए, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, होनी चाहिए। तो सूरह जिन के अंदर आप मारिफुल कुरान में पेज नंबर 576, ये वाला जो जो प्रिंट है उसमें पेज नंबर 576 बनता है, उसको खोलें और उस दुआ को आप पढ़ें। अल्लाहुम यानी मांगे अल्लाह ताला से, अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कु इलैका ज़ौफ कुव्वती, कि ए अल्लाह मैं आपसे शिकायत करता हूँ अपनी कुव्वत के ज़ौफ की, अपनी कमजोरी की मैं आपसे शिकायत करता हूँ। व किल्लत हीलती, और जो मैंने तदबीर करी थी उस तदबीर की नाकामी की मैं आपसे शिकायत करता हूँ। वह हवानी अलन्नास, और लोगों के सामने तो मेरी कोई वक्त ही नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है, मैं इतना हल्का हूं लोगों के सामने, इसकी भी मैं आपसे शिकायत करता हूं। और उसके बाद वह अंत अरहमुर रहीमीन, और आप सब रहम करने वालों से सबसे ज्यादा रहम करने वाले, वह अंत रब्बुल मुस्तफीन, और आप कमजोरों के रब हैं, कमजोरों को पालने वाले हैं, कमजोरों की तमाम जरूरियात को पूरा करने वाले हैं, रब्बुल मुस्तफीन, फअंत रब्बी, और आप मेरे भी तो रब हैं, आप मेरी भी तो जरूरियात को पूरा करने वाले हैं, आप मेरी भी तो मजबूरी के अंदर मेरी मदद करने वाले हैं, अंत रब्बी, आप मेरे भी तो रब हैं। वह इला मन तकिलनी इला बईदिन यतजहमुनी, ऐ अल्लाह आपने मुझे किसके हवाले कर दिया है, किन लोगों के हवाले कर दिया है कि जो कि मेरे दरपे हुए हैं, यानी ऐसे गैर आदमी, ऐसे दूर 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 के लोग जिनका जिन जिनके साथ मेरा कोई ताल्लुक भी नहीं है, आपने मुझे इनके हवाले कर दिया है कि वो जो चाहे मेरे साथ करें, राइट। इला मन तकिलनी इला बईद, जो बईद के लोग हैं, दूर के लोग हैं, ये तो जहमुनी कि जो मेरे ऊपर हमला करता है, औ इला अदूविन या किसी दुश्मन के हवाले कर दिया है, मलकतहु अमरी मेरे उमूर को, मेरे मुआमलात को आपने मेरे दुश्मन के हवाले कर दिया है, वो इसका मालिक बन गया है। लेकिन उसके बाद क्या फरमाते हैं, कितनी प्यारी बात फरमाते हैं, इन लम तकुन साखितन अलैया, लेकिन ए अल्लाह अगर आप मुझसे नाराज नहीं हैं, ठीक है, ये तो आपने मेरे साथ मामलात किए हुए हैं ना, ठीक है, पिछले पिछली क्लास में क्या बात हुई थी? अपने आप को अल्लाह ताला के कंप्लीटली हवाले कर देना ना। क्या था वो? अस्तगफिरुल्लाह, जी, फिनाए कामिल, फिना कर देना अपने आप को अल्लाह ताला के सामने, ठीक है। तो जब इंसान अपने आप को अल्लाह ताला के सामने फिना कर देता है, तो अब जो कुछ उसके साथ हो रहा है उन सब को अल्लाह ही से मंसूब करता है ना, यही तो फिनाए कामिल है। तो नबी अलैहि सलाम को फिनाए कामिल हासिल थी ना, तो जो कुछ कर रहे थे ताइफ वाले, तो उसको ताइफ वालों की तरफ मंसूब नहीं कर रहे थे, बल्कि उसको अल्लाह ताला के, अल्लाह आपने मुझे नौ के हवाले किया है ना, ठीक है, आप ही की यानी इजाजत से तो ये मेरे साथ ये काम कर रहे हैं। इन्होंने जो मुझे पत्थर मारे, जो मुझे इन्होंने बुरी बुरी बातें सुनाई, मेरा खून निकल आया और मेरी मदद करने से बिल्कुल इन्होंने इनकार कर दिया, हालांकि मैं इतना दूर से चल करके इनके पास आया था, इनकी अपनी भला के लिए, भलाई के लिए आया था, इनकी अपनी खैर ख्वाही के लिए ना, कि ये जहन्नुम के अजाब से बच जाए, इसलिए मैं इनके पास आया था ना, लेकिन उन्होंने मेरे साथ क्या किया? लेकिन ए अल्लाह आपकी मर्जी से किया ना इन्होंने सब मेरे साथ, लेकिन ए अल्लाह अगर आप मुझसे नाराज नहीं हैं, इन लम तकुन साखतन अलैया फला उबाली, तो मुझे कोई परवाह नहीं है, राइट, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो इस तरह से बंदा दुआ करे ना अल्लाह ताला से, तो फिर हालात तो अल्लाह ताला बदल देते हैं, जब अल्लाह ताला की मशीयत में होता है अल्लाह ताला हालात भी बदल देते हैं, लेकिन दिल को इत्मीनान मिल जाता है इंसान को, इंसान के, और इंसान के हौसले अल्लाह ताला बढ़ा देते हैं, और वो उन्हीं हालात से फिर मुकाबला करने के ज्यादा काबिल हो जाता है और बहुत कुछ हो जाता है। अल्लाह ताला तो हर चीज के ऊपर कादिर है, अल्लाह ताला फिर सब कुछ कर देते हैं, ठीक है। बस अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले करना ना, ये की है, यार चाबी होती है ना दरवाजे की, भाई चाबी आप खोलेंगे अंदर तो सब कुछ मौजूद है, लेकिन इस चाबी को हम नहीं खोल पाते हैं। चाबी क्या है? तफवीज, अल्लाह के हवाले करना अपने आप को, ठीक है, हम अपने मामलात को अल्लाह के हवाले कर देना, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन यही चाबी हमारी जो है ना, वो हम हमारे वो उस दरवाजे का जो होल है ना, उस होल के अंदर हमारी चाबी अंदर ही नहीं जा रही होती, अंदर जाएगी तो हम उसको घुमाएंगे, फिर उसके बाद पूरा घुमाएंगे तो दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन किसी को तो चाबी अंदर नहीं जा रही होती, फिट ही नहीं हो रही होती है कि वो उस होल के अंदर चाबी जाए, राइट। और फिर वो जाती भी है ना, तो फिर हिलाने में फिर हमारे हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, उस चाबी को घुमाने में हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, कहेंगे ओ अगर मैंने घुमा दिया इस चाबी को, यानी अल्लाह के हवाले कर दिया, तो फिर मेरी ख्वाहिशात कैसे पूरी होंगी, और मैं जो देखना चाहता हूँ, जो मेरी मर्जी मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैसियत रखती है, वो मेरी मर्जी कैसे पूरी होगी, राइट। ये शैतान फिर उसके हाथ कंपवाना शुरू कर देता है, हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं हमारे, ठीक है, हमारे हौसले पस्त हो जाते हैं, लेकिन वो शैतान करवा रहा होता है। तो खैर हमारी सबसे ज़्यादा क्या है, मतलब सबसे आसान काम है अल्लाह के हवाले करें, और अल्लाह ताला फिर चीज़ों को, फिर अल्लाह ताला फिर कहते हैं ना हमारे मशाइख बयान में या दुआ के अंदर कहते हैं, अल्लाह सर के बालों से पकड़ करके हमें नेक बना दे, ठीक है, यानी हम चाहें ना चाहें सर के बालों से पकड़ कर किसको चलाया जाता है, जो खुद नहीं चलना चाहता, राइट, जो खुद चलना चाहता है तो उसको तो आप हाथ पकड़ के ज़्यादा से ज़्यादा चला लेते हैं, उंगली पकड़ करके चला देते हैं ताकि उसको रास्ता आप दिखा दें, राइट, लेकिन जो चलना नहीं चाहता है ना उसको कैसे उसको कैसे चलाते हैं, पकड़ करके चलाते हैं, सर के बालों से पकड़ कर, जैसे मुजरिम को चलाया जाता है। तो अल्लाह ताला के सामने अपने आप को कम से कम ऐसे तो पेश करें कि अल्लाह मैं मुजरिम हूँ, मैं चलना चाहता नहीं हूँ, यानी मेरा नफ्स जो है वो मुखालिफ है, मैं बहुत कमजोर हूँ, लेकिन इस वक्त मैं दुआ मांग रहा हूँ आपसे कि अल्लाह आप मुझे चला दें, ठीक है, जैसा आप चाहते हैं मुझे वैसा बना दें, ठीक है, इखलास के साथ ये वाली दुआ मांग करके देखें फिर अल्लाह ताला कैसे रास्ते खोलते हैं। तो आगे फरमाया कि जाहिर यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम उम्मत से ये फ़र्ज़ मंसूख कर दिया गया, अलबत्ता इसका इस्तेहबाब और इंदल्ला पसंदीदा होना फिर भी बाकी रहा। इस्तेहबाब यानी मुस्तहब उस अमल को कहते हैं जिसको करने के ऊपर सवाब मिलता है, ना करने के ऊपर गुनाह नहीं मिलता, तो इसी को पसंदीदा भी कहते हैं। और इसमें भी यह आसानी कर दी गई कि वक्त की और तिलावत कुरान की कोई तहदीद नहीं रखी गई, यानी कोई हद अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है, हर शख्स अपनी अपनी ताकत और फुर्सत के मुताबिक जितने वक्त में अदा कर सके कर ले, और इसमें जितना कुरान पढ़ना आसानी से हो सके पढ़ ले। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत मकदार नज़र आती है वो 8 रकत है। ठीक है, दो 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 दो, इस तरह से 8 रकतें हो गई। तो हमारे मशायख जो है वो 4 पढ़ लिया करते हैं, अगर मौका हो और दिल के अंदर इंशराह हो, यानी तबीयत जो है वो अच्छी महसूस कर रही हो, तो 8 भी पढ़ लें, वक्त भी है और तबीयत में भी एक इंशराह है तो 8 भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लंबी सूरतें भी पढ़ सकते हैं, छोटी भी पढ़ सकते हैं। कुछ मशायर जो हैं वो फरमाते हैं कि सूरह यासीन जो तहज्जुद के अंदर पढ़ ले तो फिर उसका पूरा दिन जो है ना फिर सेट हो जाता है, यानी इस तरह से उसका मफहूम बनता है। ठीक है, तो सूरह यासीन की तिलावत भी कर सकते हैं। दूसरी सूरतें जो आप याद करती हैं, माशाल्लाह कुछ खवातीन शौक से कुरान का कुछ ना कुछ हिस्सा याद करके रखी हुई हैं, कुछ ने पूरा हिफ्ज किया हुआ है, तो जितनी तौफीक हो। लेकिन इसमें चंद बातों का ये ख्याल रखें कि तहज्जुद में इतना ज़्यादा अपने आप को एग्जर्ट ना करें कि इसकी वजह से फजर मुतासर हो, पहली बात। दूसरी ये है कि जो दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो मुतासर ना हो, जो जिम्मेदारियाँ हमारे जिम्मे अल्लाह ने लगाई हैं या हमारे मशाइख ने लगाई हैं वो मुतासर ना हो। ठीक है ना, और तीसरी बात यह है कि नमाज के बाद जो है वो दुआ के लिए भी कुछ टाइम रखें। ठीक है, 5 मिनट जो है वो कम अज़ कम दुआ के लिए रखें तो बहुत अच्छा है, 10 मिनट रख लें तो और भी अच्छा है। मतलब दुआ तो जब मांगना शुरू करते हैं तो वक्त का तो पता ही नहीं लगता, 20 मिनट गुजर जाते हैं पता ही नहीं लगता। मशाइख की दुआएं आप देखें, हमने देखा है आधे आधे घंटे तक दुआ मांगते रहते हैं, राइट, और हम आधे घंटे ना वो मचलते रहे कि हमसे तो बैठा ही नहीं जाए। ठीक है, लेकिन वो आधे घंटे तक दुआ मांगते हैं, क्योंकि एक तार जो जोड़ करके शुरू होते हैं ना तो फिर वो रुकने का नाम नहीं लेते। ठीक है, तो दुआ तो आधे आधे घंटे तक, एक ही घंटे तक भी मांगी जा सकती है, हम कम से कम 5 मिनट तो कम से कम मुतय्यन रखें ना कि अल्लाह ताला के साथ फिर दुआ मांगें, और अगर मुराकबे का भी अल्लाह ताला ने तौफीक दी है तो फिर कुछ मिनट जो है वो मुराकबा भी कर लें और उसको कंटिन्यू करें। जैसे कि शायद आपके ग्रुप के ऊपर साहब ने किसी के सवाल का जवाब भी शेयर किया था कि खवातीन ने तो मस्जिद नहीं जाना होता ना, तो फजर की नमाज का टाइम तो आखिर वक्त तक कामिल रहता है, बाकी नमाजों में होता है ना कि अव्वल वक्त में पढ़ लेना अफजल है, लेकिन फजर में ऐसा नहीं है ना। एटलीस्ट अहनाफ के नज़दीक, यानी हनफी मज़हब के मशाइख के नज़दीक, फजर का वक्त आखिर वक्त तक कामिल रहता है, और अफजल वक्त जो है वो तो आखिर का वक्त होता है फजर के अंदर, यानी जब रोशनी फैल जाती है। ठीक है, तो ख़वातीन ने मस्जिद भी नहीं जाना होता, तो आप यानी अगर तहज्जुद के वक्त में आप मुराकबा शुरू करें और सारा वक्त जो है मुराकबा करते रहें, और आखिर में जब 20 मिनट रह जाएं उस वक्त मुराकबा ख़त्म करें, अपने सेलफोन में अलार्म लगा दें। अल्लाह ताला ने कितनी आसानियां आजकल करी हुई हैं, सेलफोन भी सबके पास होता है, अलार्म का उसके अंदर भी मौजूद होता है, 20 मिनट पहले का अलार्म बजे आप उठें और फजर की नीयत बांध लें, सुन्नत पढ़ें और फर्ज पढ़ लें। इस तरीके से जिसके लिए फजर का वक्त डिस्ट्रैक्शन से फरागत का वक्त है, कुछ लोगों को तो बच्चों को तैयार करना होता है, कुछ लोगों को जैसे शौहर साहब को तैयार करना होता है, उनके लिए पराठे बनाने होते हैं, तो उनकी फिर मजबूरी, अल्लाह ताला को पता है कि शौहर साहब पराठे के बगैर उनका दिन नहीं गुजरता, तो अल्लाह ताला को मालूम है इस बात का। लेकिन जिनके यहाँ पराठों और बच्चों की तैयारी का मसला नहीं है तो वो फिर इस तरीके से शौक के साथ उस वक्त मुराकबा भी कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन वक्त होता है मुराकबा करने का। बहरहाल 2 रकत पढ़ें, 4 रकत पढ़ें या 8 रकत पढ़ें, 6 भी पढ़ सकते हैं, वैसे 6 की भी कोई ममानियत थोड़ी है। अच्छा, कोई सवाल अगर इस मौजू पर हो तो पूछ लीजिएगा। आगे फरमाते हैं, अहकाम शरिया के मनसूख होने की हकीकत, कि अल्लाह ताला क्यों नस करते हैं, तो दुनिया की हुकूमतें या इदारे जो अपने कवानीन में तरमीम व तनसीख करते रहते हैं, उसकी बेशतर वजह तो ये होती है कि तजुर्बे के बाद कोई नई सूरत हाल सामने आती है जो पहले से उनको मालूम नहीं थी, हुकूमत वालों को दुनिया के, तो इस सूरत हाल के मुताबिक पहले हुक्म को मनसूख करके दूसरा हुक्म जारी कर दिया जाता है, मगर अहकाम इलाहिया जिसमें इसका कोई तसव्वुर और एहतमाल ही नहीं हो सकता कि पहले मालूम नहीं था, क्योंकि अल्लाह ताला के इल्म मुहीत मुहीत अजली और अबदी से कोई चीज़ बाहर नहीं है। ठीक है, अजल से जो कुछ है और अबद तक जो कुछ होगा अल्लाह ताला के ऑलरेडी इल्म में सब कुछ मौजूद है, तो कोई हुक्म शरई जारी होने के बाद लोगों के क्या हालात रहेंगे, क्या क्या सूरतें पेश आएंगी, अब ताला को पहले ही से ये मालूम है, लेकिन बइक्तज़ाए हिकमत व मसलहत कोई हुक्म कुछ अरसे के लिए जारी किया जाता है, पहले ही से उसका हमेशा जारी रखना मकसूद नहीं होता, यानी अल्लाह को पता होता है कि मैंने कितना अरसा कौन सा हुक्म जारी रखना है, بلکہ ایک مدت اللہ کے علم میں متعین ہوتی ہے کہ اس مدت تک یہ حکم جاری رہے گا، مگر اس مدت کا اظہار مخلوق پر بمصلحت نہیں کیا جاتا۔ مخلوق کا لفظ استعمال کیا، اور مخلوق کے اندر فرشتے بھی شامل ہیں، یعنی جبرائیل علیہ السلام جو کہ وحی لانے والے، وہ بھی مخلوق میں شامل ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مخلوق میں شامل ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ظاہر ہے باقی مسلمان تو پھر ان کے نیچے ہی آتے ہیں، تو کسی کے اوپر مدت ظاہر نہیں کی جاتی۔ اس وجہ سے نہ نبی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ حکم بعد میں منسوخ ہونے والا ہے، نہ جبرائیل علیہ السلام کو پتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ الفاظ کے عموم سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم غیر موقت اور دائمی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو پہلے حکم آیا ہوا تھا نا، تو اس میں ایسے کوئی انڈیکیشن بھی نہیں ہوتی الفاظ کے اندر کہ جس سے اندازہ ہو سکے کہ بس یہ کچھ عرصے کے بعد حکم ختم ہو جائے گا۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ غیر موقت ہے یہ، یعنی اس کا کوئی وقت نہیں ہے ختم ہونے کا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائمی ہے۔ عند اللہ، جو اس کی مدت مقرر ہے، جب وہ مدت ختم ہو کر حکم واپس لیا جاتا ہے، تو مخلوق کی نظر میں وہ حکم کی منسوخی ہوتی ہے۔ کتنی زبردست بات کری ہے، یہ جو منسوخی کا لفظ ہے نا، یہ مخلوق کی نظر کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ کی ہاں کوئی چیز منسوخ نہیں ہو رہی ہوتی، اللہ تعالیٰ کی ہاں تو تبدیل کی جا رہی ہوتی ہے خالی، ٹھیک ہے، کیونکہ اب اس کی اب پہلے حکم کی ضرورت نہیں ہے، اب دوسرے حکم کی ضرورت ہے، تو منسوخ تو ہم سمجھتے ہیں اس کو، یعنی انسان، ٹھیک ہے، حقیقت میں وہ بیان مدت ہوتا ہے، اصل میں وہ صرف یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب اس کی مدت پوری ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس وقت مخلوق پر ظاہر کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ حکم ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ صرف اسی مدت کے لیے جاری کیا تھا، اب وہ مدت ختم ہو گئی، حکم باقی نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ بہترین الفاظ میں اس ناسخ منسوخ کا جو مسئلہ ہے نا، یہ سمجھا دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو اعتراض کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ قرآن پر جو اعتراض کرتے ہیں نا، تو ان میں سے ایک یہی ہوتا ہے کہ بھئی کیوں، کیا وجہ تھی، کیا پہلے پتہ نہیں تھا، اور کیوں کر دیا، اور یہ کر دیا ہوگا، اس طرح کے اعتراض والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے یہی حرکتیں ہوتی ہیں، تو ان کے تو خیر یہ الفاظ پڑھ کے بھی شاید بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ ان کے پھر مسئلے دوسرے ہوتے ہیں۔ اصل میں اگر اخلاص کے ساتھ ایک طالب علمانہ سوال کر رہے ہوتے تو پھر تو ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی اس لائن کو پڑھ کر کے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کے اندر اخلاص نہیں ہے اور وہ طالب علمانہ سوال نہیں کر رہے بلکہ اعتراضانہ سوال کر رہے ہیں نا، تو ان کے پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ اصول کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال ہمارے مشائخ کا کام یہ ہے کہ وہ بات کو پھر بھی سمجھا دیتے ہیں، اگلے بندے کا جو معاملہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے حوالے ہوتا ہے اس نے۔ بہرحال کسی نے پرائیویٹلی ایک میسج لکھا ہے تو چلے میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ سن کر کے سمجھنے کی کوشش کی جگہ کیا کہہ رہی ہیں۔ اللہ کے حوالے کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم جو مسئلہ پیش ہے اس کی عافیت کی دعا کریں اللہ سے، اور اس مسئلے کو لے کر پریشان نہ ہوں، بس دعا کرتے رہیں۔ ہاں، اس مسئلے کو لے کر کے پریشان نہ ہوں، یعنی پریشانی کا مطلب بھی صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کے بارے میں بالکل کوئی تدبیر نہ کریں اور اس کی طرف بالکل ہی دھیان نہ کریں، وہ تو کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اس کے بارے میں تدبیر کریں، تو ضرورت کے درجے میں آپ بے شک تدبیر کریں، ضرورت کے درجے میں آپ اس کے بارے میں سوچیں بھی، لیکن اس سے آگے مت بڑھائیں اس کو، ٹھیک ہے، یعنی ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا، حد سے آگے نہیں جائیں، ٹھیک ہے، ضرورت کے درجے میں ان چیزوں کو رکھیں بس۔ ظاہر ہے ہر 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 معاملے میں ڈفرینٹ تفصیلات ہوتی ہیں، تو وہ تو ایسے آپ کو عمومی طور پر نہیں بتایا جا سکتا، لیکن جو جیسے پچھلے ہفتے کا جو بیان تھا، تفویض اس بیان کا ٹائٹل تھا رکھا گیا ہے، تو آپ اس کی ریکارڈنگ پہ دوبارہ بھی سن لیں، اور مشائخ نے تفویض کے اوپر جو باتیں لکھی ہیں ان کو بھی آپ اپنے مطالعے میں رکھیں، تو مسئلہ سمجھنا اور زیادہ آسان ہوگا، کیونکہ اس کے اندر پھر سب لکھی یہ سب باتیں بتائی ہیں نا کہ جی تفویض کی شرائط کیا ہوتی ہیں، تفویض کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور ٹھیک ہے کیا چیز تفویض ہے، کیا چیز تفویض نہیں ہے، تو بس دعائیں کرتے رہیں، یہ تو جواب نہیں ہے نا کہ بس دعائیں کرتے رہیں، کیونکہ اور کام بھی کرنے پڑتے ہیں، دعا تو کرنی ہی ہے، ٹھیک ہے، دعا کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے نا، تو دعا تو منیمم کام ہے جو کہ ہر بندے نے کرنا ہے ہر معاملے کے لیے۔ اچھا، قرآن کریم میں بہت سی آیات کے منسوخ ہونے پر جو عامیانہ شبہ کیا جاتا ہے، عامیانہ کہتے ہیں بالکل ہی یعنی سطحی قسم کا، بہت ہی یعنی नो डेप्थ, जिसके अंदर कोई डेप्थ नहीं होती, कोई गहराई नहीं होती, कोई इखलास नहीं होता, उसको आमियाना आमियाना कहा जाता है, उसको शामियाना नहीं है ये, आमियाना, राइट। तो आमियाना शुभो जो किया जाता है ना, इस तकरीर से वो शुभो रफा हो गया। यानी ये तकरीर से मुराद ये उन्होंने ऊपर जो दो तीन लाइनों में बात लिखी है ना, उसी को तकरीर कह रहे हैं कि इस तकरीर से वो शुभा दूर हो गया, रफा हो गया। क्या नमाज तहज्जुद खास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस आयत के बाद भी फ़र्ज रही? बाज आइमा तफसीर ने इसी को इख्तियार किया है। उनका इस्तदलाल सूरह बनी इसराइल की आयत वमिनल्लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक से है, ठीक है। यानी जिन मुफस्सरीन ने कहा है कि आप सल्लम के ऊपर बाद में भी फ़र्ज रही, तो उन्होंने दलील कहाँ से पकड़ी? उसको कहते हैं इस्तदलाल करना। यानी उन्होंने दलील कहाँ से ली? जो सूरह बनी इसराइल के अंदर ये आयत है ना, वमिनल्लैली, कि रात में से, फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, तहज्जुद आपके ऊपर नफिल है, ठीक है, आपके लिए नफिल है। तो इससे उन्होंने दलील पकड़ी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अभी भी ये फर्ज रही, जिसमें नमाज तहज्जुद को खास आपके जिम्मे एक जायद फर्ज की हैसियत से आयद किया गया है इस आयत के अंदर। क्योंकि नाफिला के लघवी मानी, यानी लिटरल ट्रांसलेशन वर्ड, यानी लफ्जी ट्रांसलेशन जायदा की होती है। नफिल का मतलब क्या होता है? जायदा, एक्स्ट्रा, ठीक है, एडिशनल। तो जायदा क्या आते हैं, और मुराद फरीजा जायदा है यानी यहाँ पर मुराद क्या है, एक एक्स्ट्रा फरीजा आपके ऊपर। यानी बाकी मुसलमानों के ऊपर जो नमाजें फर्ज हैं, ये एक एक्स्ट्रा फर्ज आपके ऊपर है, ठीक है। नाफिलतलक से यहाँ पर ये मुराद है इन मुफस्सरीन के नज़दीक। मगर जमहूर उलमा के नज़दीक, अब जमहूर उलमा का मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों से मैंने पूछना छोड़ दिया वैसे क्लास में, ये गलती हो गई है, तो जमहूर उलमा के बारे में ये आप लोगों का क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या मतलब जमहूर उलमा? डेमोक्रेसी ऑफ उलमा या डेमोक्रेटिक उलमा, और बाकी उलमा जो होते हैं वो अनडेमोक्रेटिक उलमा होते हैं। जमहूर उलमा का क्या मतलब है? जी, मेजॉरिटी ऑफ उलमा, ठीक है, जमा है उलमा से क्या मतलब? हाँ भाई, मेजॉरिटी, बस अक्सरियत, उलमा की अक्सरियत, ठीक है। तो इस्लाम के अंदर जो डेमोक्रेसी का लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, इस्लामिक डेमोक्रेसी, वो उलमा की, उलमा के दरमियान वोटिंग होती है, ठीक है। उलमा की अक्सरियत जिस बात के ऊपर मुत्तफिक हो जाए, उसको इस्लामी हुकूमत या इस्लामी मुआशरा लेकर के चलता है, ठीक है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। उलमा की माइनॉरिटी को भी बिल्कुल रिजेक्ट नहीं किया जाता, उसको भी नोट कर लिया जाता है, ठीक है, लेकिन प्रेफर्ड जो है वो उलमा की मेजॉरिटी को किया जाता है। ये है इस्लामिक डेमोक्रेसी, ठीक है। और जो गैर इस्लामिक डेमोक्रेसी है, ठीक है, वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वगैरह, तो उसके अंदर फिर उलमा को तो कुछ समझा ही नहीं जाता, उसके अंदर तो फिर यानी ये कॉन्सेप्ट नहीं होता उनके यहाँ, ये आलम और जाहिल का। तो क्योंकि वो जोहला की ही बनाई हुई डेमोक्रेसी है, तो फिर जोहला को तो फिर उलमा के साथ एक अमूमी तौर पर एक बोझ और इनाद होता ही है ना, तो इस वजह से उनके यहाँ ऐसा नहीं होता। बहरहाल, इस पर कई दफ़ा हम बात कर चुके हैं, इस वजह से आगे चलते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ उलमा के नज़दीक सही यही है कि फर्जियत उस नमाज की उम्मत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों से मनसूख हो गई है। अलबत्ता बतौर इस्तेहबाब इसकी अदायगी सबके लिए बाकी रही है। और आयत मस्कूरा में जो ये नाफिलता लक का लफ्ज है, देखें जो मेजॉरिटी ऑफ उलमा का मौकफ है ना कि सबसे मनसूख हो गई है, नबी अलैहिस्सलाम से भी और उम्मतियों से भी, तो उसके ऊपर उनके पास दलील भी है, क्योंकि उलमा जो है वो दलील के साथ ही बात करते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये दलील हर एक को बताना या ना बताना, ये डिपेंड करता है। लेकिन उलमा जो भी मौकफ इख्तियार करते हैं, किसी दलील की बुनियाद पर इख्तियार करते हैं। पिछले इस जुमे के बयान को अगर किसी ने सुना हो, तो उसमें साजिश ने ही बात करी थी कि जब फतवा पूछा जाता है ना उलमा से, तो उलमा की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो उस फतवे की दलील भी बताएं अवाम को,
कि हमने ये जो आपको फतवा दिया है फलानी चीज के हलाल होने पर या हराम होने पे के ऊपर, तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या दलाइल हैं, कौन सी कुरान की आयत से हमने इस्तदलाल किया, कौन सी हदीस से हमने इस्तदलाल किया, ये उलमा की जिम्मेदारी नहीं होती बताना, ठीक है। इसी वजह से जो कुछ अरसा पहले तक के मुफ्ती हजरात थे, उनके फतवा के अंदर ये कोई रेफरेंसेस नहीं लिखे हुए होते थे कि इसकी बुनियाद पर हमने आपको ये फतवा दिया है, ठीक है। सिर्फ वो जवाब दिया करते थे, ठीक है। ये इस दौर की एक मुसीबत है हमारे अपनी हरकतों की वजह से कि फिर मुफ्ती हजरात जो है ना वो सारी की सारी दलाइल भी लिख दिया करते हैं, वो उनका एहसान है हमारे ऊपर, और हमारी तरफ से ये एक एक मुसीबत है कि जिसकी वजह से हमने उनकी जिंदगी बस और मुश्किल ही कर दी है, खाली और कुछ नहीं किया हमने। बहरहाल लिखने में जो उनको एक एक्स्ट्रा टाइम लगता है उन रेफरेंसेस का, तो उसके ऊपर उनको जाहिर है बहुत ज्यादा अजर ही मिलता होगा। तो बहरहाल जो भी वो फतवा देते हैं या मुअक्कफ इख्तियार करते हैं, तो उसके पीछे कोई दलील होती है। तो अब इस मुअक्कफ के पीछे दलील क्या है, वो दलील ये है कि भाई सूरह बनी इसराइल की इस आयत में जो नाफिलतल लक का लफ्ज है ना, उसकी वो क्या है, वो अपने इस्तलाही मानी में बहुक्म नफिल ही है, यानी जैसे नफिल का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा काम, तो यहाँ पर वही मतलब है इसका एक एक्स्ट्रा काम के। फिर इसकी खसूसियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो आयत में लफ्ज लका से मफहूम होती है कि आपके लिए इसको हमने एक्स्ट्रा रखा है, तो उसकी क्या वजह है, ये पूरी तफसील और नमाज तहज्जुद की फर्जियत मनसूख होने के बाद ये नमाज सिर्फ नफिल व मुस्तहब के दर्जे में रही या सुन्नत मौकदा के दर्जे में रही, ये पूरी तहकीक सूरह बनी इसराइल की आयत मस्कूरा के तहत में गुजर चुकी है, वहां देख लिया जाए, वहां तहज्जुद के खास फजाइल और मसाइल का भी जिक्र कर दिया गया है, ठीक है। तो वो सारी फिकी तफसीलात हजरत ने सूरह बनी इसराइल में जो कि 5वें वॉल्यूम के अंदर थी, तो वहां पे अगर किसी को देखना है तो देखें। मेरा इरादा था कि देख करके आपके सामने उसको बयान भी कर देंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल मौका नहीं मिला कि मैं उसको यानी एक दफा देख सकूँ क्लास से पहले। खैर, मकसद हमारा ये फिकही तफसीलात में जाना वैसे भी ज्यादा नहीं होता इस क्लास के अंदर, ये क्लास तो एक तरबियती और तजकिया से मुतल क्लास है, तो इस वजह से इस टॉपिक के ऊपर जो आपके सामने हमने बात करनी थी वो ये थी कि फर्ज और नफिल का फर्क है वो क्या है। एक रिपीटेशन भी है काफी लोगों के लिए जो पहले सुन चुके होंगे, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है नई बात हो, कि फर्ज क्या होता है। फर्ज अगर आप में से कोई बताए कि फर्ज के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, एक लफ्ज में अगर फर्ज को डिस्क्राइब करना हो तो वो क्या होता है, फर्ज वाजिब होता है। अच्छा जी, फर्ज जो है ना ये कर्ज होता है, ठीक है। कर्ज, आपने किसी से कर्ज लिया है, अब आप उस कर्ज को अदा कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप किसी से कर्ज लेते हैं और उस कर्ज को अदा करते हैं, तो इसमें आपको तमगे मिलने चाहिए, इसमें आपको कुछ मिलना चाहिए कि हाँ भाई इन्होंने कर्ज अपना कर्जा अदा कर दिया, ठीक है। तमगा तो नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो अल्लाह ताला का ये एहसान है हमारे ऊपर, अल्लाह ताला की रहमत की वजह से हमें फर्ज अदा करने के ऊपर अल्लाह ताला बहुत ज्यादा सवाब अता फरमाते हैं, ठीक है। और हमारे ऊपर जो एक बोझ है ना, अल्लाह ताला की तरफ से जो एक जिम्मेदारी डाली गई है, एक बोझ, एक राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो भी अदा हो जाती है और साथ साथ सवाब भी मिल रहा होता है। ये तो अल्लाह ताला की रहमत है ना, वरना दुनिया के इंसान तो इस तरह से नहीं कर्ज अदा करने के ऊपर किसी को जो है वो एक्स्ट्रा चीजें देते हैं, ठीक है। तो ये चूंकि कर्ज है ना, तो इसी का एक दूसरा पहलू क्या है, दूसरा पहलू ये है कि कर्जा अदा करना कोई एहसान तो नहीं होता किसी के ऊपर, ठीक है। तो जब किसी के ऊपर एहसान नहीं होता ना, तो इसके अंदर भी फिर एक एक्स्ट्रा यानी क्या कहते हैं, अपने आप को कुछ समझना शुरू कर देना, ये वाला उनसर भी इसके अंदर नहीं होता या बहुत कम होता है, ठीक है। कि अपने आप को कुछ समझना शुरू हो गए कि भाई मैंने तो कर्ज अदा कर दिया है, ठीक है, ये उमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता। हाँ, इस तरह हो सकता है कि आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं कि जहाँ पे खूब सारे लोगों ने कर्जे लिए हुए हों, ठीक है, और कोई भी अदा ना करता हो, और एक आप ही हैं कि जिन्होंने कर्जा अदा कर दिया, तो अब इसमें तो फिर चलो हो सकता है एक दिल के अंदर जरा बुलबुले फूटना शुरू हो जाए अपने बारे में, और इंसान अच्छा फील करना शुरू हो जाए कि हाँ भाई देखो कोई भी अदा नहीं करता, मैंने कर्जा अदा कर दिया है। ठीक है, तो इसमें फिर एक तकब्बुर का भी पहलू आ सकता है कि भाई मैं सबसे बेहतर हूँ इसलिए कि मैंने कर्जा अदा कर दिया है। ठीक है, और खुद पसंदी का भी एक पहलू पैदा हो सकता है कि जी मैं कितना अच्छा हूँ कि मैंने कर्ज अदा कर दिया है। ठीक है, लेकिन चूंकि एक इस्लामी मुआशरे के अंदर नमाज और रोजा और जक़ात और फर्ज, इसकी जो फर्जियत है ना, इसको अदा करने का एक मामूल बन चुका होता है। ठीक है ना, यह एक एक नॉर्मल इस्लामी मुआशरे के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से एक नॉर्मल इस्लामी मुआशरे को अगर हम देखें तो उसमें फर्ज की अदायगी जो है ना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी वजह से इंसान को तकब्बुर हो, क्योंकि सारे ही अदा कर रहे होते हैं। ठीक है, या एक दीनदार माहौल में, आजकल के हिसाब से आप कहें तो दीनदार माहौल के अंदर रहने वाले जो लोग होते हैं तो सारे ही फर्ज अदा कर रहे होते हैं, तो फर्ज अदा करने की वजह से ना ये रूहानी मसले पैदा नहीं होते तकब्बुर और उजब वाले। ठीक है, लेकिन जब हम फर्ज से आगे बढ़ करके नफने अदा कर रहे होते हैं, तो नफने अदा करने के अंदर भी अगर तो आप किसी ऐसे माहौल में रह रहे हैं कि जिसके अंदर माशाल्लाह सारे ही लोग या अक्सर लोग जो हैं वो खूब नफने भी अदा कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी फिर तकब्बुर का कोई उनसर पैदा नहीं होगा, क्योंकि माशाल्लाह सभी अदा कर रहे हैं और एक माहौल की वजह से आप भी अदा कर रहे हैं। ठीक है, यानी माहौल की वजह से कर रहे हैं या अल्लाह की, एक्चुअली अल्लाह की रजा की वजह से कर रहे हैं, लेकिन सभी कर रहे हैं ना, एक माहौल बना हुआ है ना नफनों का, तो वहां पर तो इंसान नफने अदा करता है और अपने आप को कोई सुपीरियर नहीं समझ रहा होता। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे माहौल में रहते हैं कि जहां पर लोग बहुत मुश्किल से फर्ज अदा तो कर लेते हैं, नफने वफने कोई अदा नहीं कर रहा होता, ठीक है, तो वहां पर जब आप नफने अदा कर रहे होते हैं ना, तो फिर वो नफने अदा करना आपके लिए तकब्बुर का सबब बन सकता है। ठीक है, क्योंकि देखें शैतान तो हर वक्त मौके की तलाश में रहता है ना, वो कोई उसको मौका मिल जाए वो उसको हाथ से जाने नहीं देता, तो वो फिर ना फिर कहते हैं अच्छा भाई देखो इतने सारे लोग तो सारे सोए पड़े हुए हैं, तुम उठ करके तहज्जुद पढ़ रही हो, ठीक है, तुम जो है वो नफले तो फिर हर चीज में होती है ना, ये फर्ज जो है वो सिर्फ नमाज तो नहीं है ना, फर्ज जो है वो जकात भी है। तो अगर माली इबादत की बात की जाए तो माली इबादत में फर्ज जकात अदा कर देना है, और माली इबादत में नफिल वो एक्स्ट्रा सदकात अदा करना है, किसी को गरीबों की मदद करना है। ठीक है, तो ये तो हर जगह इन्वॉल्व होता है ना, ये फर्ज और नफिल वाला कॉन्सेप्ट, नमाज में भी, जकात में भी, रोजे में भी। ठीक है, रमजान के 30 रोजे ही फर्ज है ना खाली, बाकी नफली रोजे जुमेरे जुमेरात और पीर का रोजा और अय्याम बीत का रोजा, ये सब जो है ये तो नफिल रोजे हैं, तो इसके अंदर भी ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। और इसी तरीके से हज, जो पहला वाला हज होता है वो फर्ज होता है, बाकी हज तो नफिल होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर भी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो कहने की मकसद मैं मकसद ये है कि अगर आप खूब नफलों करने नफले अदा करने वाले माहौल का हिस्सा हैं, तो फिर तो आप नफिल कर रहे हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, आपके दिल के अंदर तकब्बुर और उजब के जज्बात को शैतान ऐसा नहीं है, तो फिर उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है कि वो नफिल आमाल करने वाले के दिल के अंदर ये वाले जज्बात पैदा कर दे। ठीक है, और इसको करने की वजह से फिर वो जाहिर है फिर इंसान को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, वो अपने आप को समझना शुरू हो जाता है, और उसकी फिर नीयतें भी जो है वो जाहिर है तब्दील हो जाती हैं कि भाई लोगों को जरा दिखाने की भी नीयत शुरू हो जाती है, क्योंकि और कोई कर नहीं रहा होता ना, यही ये कर रहा होता है, तो फिर लोग इसकी तारीफें भी करना शुरू हो जाते हैं, देखो तो कितनी नफले पढ़ रहा है, कितनी तहज्जुदें पढ़ रहा है, या कितना ये दूसरे काम कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से उमूमी तौर पर ये बात की जाती है कि फर्ज की अदायगी के अंदर शैतान को हिस्सा नहीं मिलता। ठीक है, फर्ज की अदायगी में शैतान अमल दखल नहीं कर पाता कि वो उसके जरिए से आपको रूहानी बीमारी में मुब्तला करे। ठीक है, लेकिन नफलों की अदायगी के अंदर शैतान को एक हिस्सा मिल जाता है कि वो इंसान को रूहानी बीमारियों में मुब्तला करे। तो इस वजह से नफलों का मामला ये होता है कि उसमें बहुत ज्यादा ना इस बात का ख्याल रख करके नफलों को अदा करना चाहिए कि मेरी नीयत जो है वो खालिस्तन अल्लाह की रजा हो, आखिरत की जजा हो, और कोई और मेरी नीयत ना बन रही हो, ना तो हम ना तो किसी दूसरे इंसान की तारीफ हासिल करने के लिए मैं नफल कर रही हूँ, ना जो है वो मैं अपने आप को खाली खुश करने के लिए नफल कर रही हूँ, ये दोनों चीज़ें गलत हैं, इन दोनों चीज़ों को अल्लाह ताला ने मना किया है। और इन दोनों काम करने से, यानी किसी भी मखलूक की खातिर जो अमल किया जाता है ना, वो अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं होता है। इसको शिरके असगर कहा जाता है, और रियाकारी भी इसी को इसको कहा जाता है, किसी भी मखलूक की खातिर, ठीक है। और उस मखलूक के अंदर अपना नफ्स भी शामिल होता है, तो अपने नफ्स की फीलिंग गुड की खातिर भी अगर कोई नेक अमल किया जाए तो वो नेक अमल भी ज़ाया हो जाता है, उसका सवाब नहीं मिलता, बल्कि वो उल्टा रूहानी बीमारियों के पैदा होने का सबब बनता है। अमल करने के बाद जो फील गुड फैक्टर होता है ना, उसके ऊपर मलामत नहीं है अमल करने के बाद, बल्कि अमल करने के बाद जो अच्छा फील होता है उसको नबी अलैहि सलाम ने ईमान की अलामत कहा है, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है अमल करने से पहले ये नियत ना हो कि मैं करूँगी तो मुझे अच्छा फील होगा, इस वजह से करती हूँ, ठीक है। ये शिर्क असगर होता है। और आप यकीन करें कि मुझे खुद हैरत हुई जब ये साजिश ने, पिछले दिनों आप लोगों को एक मैसेज भेजा था हजरत हकीम अख्तर रहमतुल्लाह अलैह का, जो था ना कि मज़े के लिए जिक्र करना, ठीक है। तो उसमें था ना कि भाई मज़े के लिए जिक्र नहीं करो, ये तो जिक्र तो करना है, तो हर हाल में करना है, चाहे मज़े मिले चाहे नहीं मिले, ठीक है। और जो बेमज़ा जिक्र भी जो करता है उसको भी जिक्र की वजह से विलायत मिल जाती है, ठीक है। तो आप यकीन करें, बाकायदा किसी अच्छे खासे, यानी दुनियावी तौर पर पढ़े लिखे और यानी दीनदार बैकग्राउंड के किसी फर्द ने, किसी हजरत ने, यानी किसी आदमी ने मुझे सवाल भेजा, कि मेरे जहन में भी ये सवाल था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस मैसेज से उस सवाल का जवाब मुझे मिल गया। लेकिन ये भी तो बताएं कि अल्लाह का जिक्र करने से मजे हासिल करने का भी तो कोई तरीका होता होगा क्या, कि अल्लाह के जिक्र से मजे हासिल करने का भी तो कोई तरीका होगा, तो वो तरीका मुझे बताएं, ठीक है। ये उनका सवाल था, ठीक है। अब हो सकता है, मुझे उनसे गुमान ज्यादा बुरा नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही बुरा है समझ लें, या अच्छा गुमान ये है कि उन्होंने ये इसलिए इस नीयत से पूछा होगा कि भाई अगर मजे भी हासिल हो जाएं तो अच्छा है कि मैं उस मजों की वजह से जिक्र करना मेरे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है उनकी ये नीयत भी हो, लेकिन उनको जो जाती तौर पर या जिस जानता है तो उससे वैसे लगता नहीं है कि उनकी ये नीयत है, क्योंकि जाती तौर पर एक जो तारुफ होता है किसी के साथ, तो फिर उनके मुताबिक फिर आपको अंदाजा हो जाता है ना कि जी उन्होंने जो सवाल किया तो वो करना क्या चाह रहे हैं असल में। बहरहाल, तो उनको फिर साजिद ने पता क्या जवाब दिया, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा मैं उनको क्या जवाब दूं, लेकिन अल्लाह ने मतलब मदद फरमा देते हैं अल्लाह ताला कभी कमजोरों की वजह से, हमने तो कुछ पढ़ा वड़ा तो हमने ज्यादा होता नहीं है, तो इस वजह से अल्लाह ताला की मदद हो जाती है, तो जवाब फिर आ जाता है दिल में। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा जवाब अल्लाह ताला की तरफ से आया, वो उनको मैंने लिख करके भेज दिया कि देखें, मजे के लिए जिक्र करना ये शिर्क असगर है, ठीक है। यानी ये सोच करके जिक्र करना कि मुझे मजे मिलेंगे, ये शिर्क असगर है, इस वजह से हमारे मशायख ने इसका कोई तरीका वजा नहीं फरमाया, ठीक है। कि जरा लेट के जिक्र करो तो मजे ज्यादा आएंगे, या जो है वो टांगों को इस तरीके से रख करके बैठ बैठ करके जिक्र करो, आगे की तरफ थोड़ा झुक करके जिक्र करो तुम्हें मजे ज्यादा आएंगे, या तुम जो है वो सुबह में एक फलाने वक्त के अंदर जिक्र करो तुम्हें ज्यादा मजे आएंगे, ठीक है। ये कहीं हमारे मशायख ने नहीं बताया, ठीक है। यानी मजे हासिल करने का कोई तरीका रखा ही नहीं ना, कोई तरीका एडवाइज ही नहीं किया, कोई तरीका प्रेस्क्राइब ही नहीं किया, क्यों, इसलिए कि ये शिर्क असगर है इस नीयत से जिक्र करना अल्लाह ताला का, ठीक है। एनीवेज, शेख से पूछ कर करें नफली काम तब भी शैतान से खतरा रहता है। शैतान से खतरा तो मरते दम तक रहता है, वो खतरा तो जब तक गले का घुंघरू बजना शुरू नहीं हो जाता, शैतान का खतरा तो रहता है, ठीक है। लेकिन आसान हो जाता है मामला, ठीक है। कोई आप नफली काम करने जा रहे हो और आपने पूछ करके वो काम कर रहे हो ना, तो शैतान के वसवसों का मुकाबला करना आसान हो जाता है कि ठीक है, क्योंकि वो तो लगा रहेगा, वो तो फिर भी आपके ऊपर हमले करता रहेगा कि तुम तो दुनिया की मोहब्बत में ये कर रहे हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ये काम नहीं करो, तुम तो नहीं, उसके हरकतें चलती रहेंगी। लेकिन एटलीस्ट आपके आपके दिल के अंदर एक जवाब मौजूद होगा कि भाई मैं तो हुक्म पे कर रहा हूँ, मैंने तो पूछा था, इखलास के साथ पूछा था, सारी तफसीलात बता करके पूछा था अपनी तरफ। ये नहीं, ऐसे भी नहीं पूछा, कुछ लोग ऐसे भी बातें पूछते हैं ना कि आधी बात बताते हैं और आधी बात गोल कर जाते हैं। तो शेख साहब तो उस आधी बात की बुनियाद पे आपको मशवरा दे रहे हैं, बाकी आधी तो आपने इंटेंशनली छुपा करके रखी है शेख साहब से। ठीक है, तो अब ये तो अल्लाह ताला जानते हैं ना, शेख साहब को तो ये सारी बातें नहीं पता होती कि आप 420 कर रहे हैं उनके साथ या क्या कर रहे हैं, शेख साहब को ये सारी बातें नहीं पता होती हैं। ठीक है, वो तो बस जो आप उनके सामने पिक्चर रखते हैं उसकी बेसिस पर आपको मशवरा दे देते हैं। लेकिन जो शख्स इखलास के साथ जितना जरूरी इंफॉर्मेशन होती है वो शेख को दे देता है और फिर उसकी बुनियाद पर शेख उसको मशवरा दे देते हैं ना, तो अब उसके लिए अल्लाह ताला भी हिफाजत फरमा देते हैं, शैतान के वसवसों से फिर उसके उसके लिए बचना आसान हो जाता है। और बस सीधा, भाई मैंने तो पूछा था ना ये मामला, तो बस अब खत्म हो गई बात, तो इस तरह से हिफाजत हो जाती है। तो शैतान का खतरा बेशक अपनी जगह पर रहता है, लेकिन उसका असर जो है वो जाहिर हो जाता है। कैन वी से कि जब हम टेंशन में होते हैं तो हमें अल्लाह का जिक्र क्यों याद आता है? दिस इज मजा। टेंशन में होते हैं तो अल्लाह का जिक्र क्यों याद आता है? नहीं, टेंशन में होते हैं तो अल्लाह याद आता है, अल्लाह का जिक्र याद आना नहीं, अल्लाह याद आता है। और फिर उसके बाद आप जो अल्लाह ताला से बात करते हैं, दुआ करते हैं, या आप कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो वो आप इलाज के तौर पर इसको देखें। ठीक है कि भाई मैं जो इस टेंशन में मुबतला हूँ या जो एक परेशानी में मुबतला हूँ, तो मैं अपने रब को याद कर रही हूँ, मैं या तो अपने जो अंबिया हैं उनकी सुन्नत पर अमल कर रही हूँ, जैसे हजरत यूनुस अलैहि सलाम ने टेंशन में थे ना वो उस वक्त मछली के पेट में, तो ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ना शुरू किया था, तो मैं भी जो है वो उसको पढ़ती हूँ उनकी सुन्नत पर अमल करने की नीयत से। या मेरे शेख ने कभी मुझे कोई बात बताई थी कि जी जब कभी ऐसा आपके साथ मामला हो तो आप ऐसा पढ़ लिया करें, तो ये भी फिर उनकी इतबा के अंदर मैं पढ़ रही हूँ, तो ये फिर मजा नहीं कहलाएगा। इसको आप समझ लें कि ये गोया के उसको दूर करने का एक इलाज है जिसको कि आप कर रही हैं। अच्छा, किसी और ने लिखा है प्राइवेट मैसेज ही कि नवाफिल करने से पहले एक सुकून आता है कि दुनिया को छोड़कर अल्लाह की तरफ रुजू कर रहे हैं, ये भी शिर्क असगर है? नहीं, ये जो आपको सुकून आ रहा है ना, ये आपको नफिल पढ़ने पे सुकून नहीं आ रहा। ठीक है, यानी नफिल पढ़ने का इससे ताल्लुक नहीं है, क्योंकि नफिल तो अभी आपने पढ़ा ही नहीं है ना, वो तो आप बाद में पढ़ेंगे। ये जो आपको उस दिल का सुकून मिल रहा है ना, ये नफिल की वजह से नहीं मिल रहा है आपको, ये उस इरादे की वजह से मिल रहा है या उस स्टेप की वजह से मिल रहा है जो अभी आपने नफिल की तरफ बढ़ाया है। ठीक है, तो ये जो आप जिस फीलिंग का जिक्र कर रही हैं ना, तो ये फीलिंग ये अमल के बाद वाली फीलिंग है। और वो अमल क्या है? वो अमल है जो आपने नफिल के लिए एहतमाम किया है ना, उस एहतमाम करना ये भी तो एक अमल है ना, तो उस एहतमाम के ऊपर आपको उसके बाद ये दिल का सुकून आता हुआ है, तो ये अमल के बाद वाला सुकून कहलाएगा और ये ईमान की अलामत है। ठीक है, आपने जैसे सवाल किया है उस सवाल ही की बुनियाद पर साजिद ने जवाब दिया ना, तो वो ये है कि आपका एहतमाम करना ये भी एक नेक अमल है, और इस एहतमाम के बाद जो आपको दिल में सुकून महसूस हो रहा है, ये अमल के बाद वाला सुकून है जिसको ईमान की अलामत कहा गया है। ठीक है, नफिल पढ़ने के बाद जो सुकून होगा वो तो उसके अलावा होगा। ठीक है, तो ये शिर्क असगर नहीं है। शिर्क असगर तो वो होगा ना कि जी आप दिल के अंदर कुछ ऐसे ही बस वो शिर्क असगर भी ना कोई इतना यानी इतना मामूली अमल नहीं होता उस, यानी अच्छा खासा इंसान को छोड़ें, इसको कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मामला, तो आगे भी पढ़ना है। तो कहते हैं कि ये आयत जिसके ज़रिए से नमाज तहज्जुद की फर्जियत मनसूख हुई, इन रब्बका यालमू से शुरू होकर फ़क़्रउ मा तयस्सरा मिन्हु तक आई है। ये आयत शुरू सूरत की आयत से 1 साल या 8 महीने के बाद नाजिल हुई है। साल भर के क़यामुल लैल की फर्जियत मनसूख हुई, तो 8 महीने से लेकर के 1 साल का पीरियड गुजरा था, उसके बाद फिर ये वाली आयत नाजिल हुई थी।
مسند احمد، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں قیام اللیل کو فرض کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک سال تک اس کی پابندی کرتے رہے۔ سورت کا آخری حصہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے تک آسمان میں روک رکھا، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ سورہ قدر کے اندر جو انا انزلناہ فی لیلت القدر فرمایا نا کہ ہم نے اس کو لیلت القدر میں نازل کیا، تو کہاں نازل کیا؟ آسمان دنیا تک نازل کیا، یعنی جو پہلا آسمان ہے اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے، تو عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے، وہاں سے آسمان دنیا تک پورا قرآن نازل ہو گیا لیلت القدر میں۔ اب وہ تدریجن موقع محل کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو آگے آگے بھیجتے رہے، تو یہی فرما رہے ہیں کہ یعنی آسمان دنیا تک رو کے رکھا اس کو۔ سال بھر کے بعد آخری حصہ نازل ہوا جس میں قیام اللیل کی فرضیت منسوخ ہو کر تخفیف ہو گئی، یعنی ہلکا کر دیا۔ تخفیف کا مطلب ہوتا ہے اب یہ معاملہ ہلکا ہو گیا، خفیف ہو گیا، اور اس کے بعد قیام اللیل صرف نفل و مستحب رہ گیا، ٹھیک ہے؟ یہ انہوں نے روایت روح المعانی تفسیر سے یہاں پہ نقل کری ہے۔ پھر ان آیات میں تنسیخ حکم کی علت یہ بتلائی ہے کہ علم اللہ تحصوہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے علت بھی ساتھ ہی اس آیت کے الفاظ میں ہی بتا دی ہے کہ بھی کیوں منسوخ کیا، کہ علم یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ تم اس کا احصاء نہ کر سکو گے، لن تحصوہ، ہرگز تم اس کا شمار نہیں کر سکو گے۔ احصاء کے لفظی معنی شمار کرنے کے ہیں، مطلب آیت کا بعض حضرات مفسرین نے یہ قرار دیا ہے کہ قیام اللیل میں اللہ تعالیٰ نے اگرچہ مقدار وقت کی پوری تعیین نہیں فرمائی، بلکہ ایک تہائی رات سے دو تہائی رات تک کے درمیان کا وقت مقرر فرمایا تھا، مگر صحابہ کرام جب اس نماز میں مشغول ہوتے تو اشتغال نماز کے ساتھ، یعنی نماز میں مشغولیت کے ساتھ، یہ معلوم ہونا دشوار تھا کہ رات آدھی ہوئی ہے یا کم و بیش، کیونکہ یا آدھی سے کم ہوئی ہے یا آدھی سے زیادہ ہوئی ہے۔ کم کا مطلب کم، آپ کو بتائیے، بیش کا مطلب کہ اس سے زیادہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اوقات معلوم کرنے کے لیے ایسے آلات، گھڑیاں وغیرہ اس زمانے میں موجود نہیں تھیں، اور ہوتی بھی تب بھی شغل نماز کے ساتھ بار بار گھڑیوں کو دیکھتے رہنا ان حضرات کے حالات اور ان کے خشوع و خضوع کے ساتھ آسان نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور گھڑی بھی دیکھ رہے ہیں، گھڑیال کی طرف دیکھ رہے ہیں، یا یہ کہ اوپن ایئر میں چھت کے اوپر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور جو ہے وہ اوپر سر اٹھا کر کے ستاروں کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا کہ اب جو ہے وہ رات کا کتنا حصہ گزر چکا، اس لیے کہ آسمان کو دیکھ کر کے اس زمانے کے لوگوں کو تو پتا تھا کہ بھائی کتنی رات گزر چکی ہوتی ہے، ان لوگوں کو یہ علم الافلاق جو ہے وہ ورثے میں ملے ہوتے تھے۔ تو اب یہ سب کام تو صحابہ نہیں کر پاتے تھے کیونکہ خشوع خضوع اتنا زیادہ ہوتا تھا، یعنی نماز کی طرف توجہ اتنی زیادہ ہوتی تھی، یعنی آسان بھی نہیں تھا، ممکن تو تھا لیکن آسان نہیں تھا یہ سارے کام کرنا۔ تو مطلب پھر کیا، یہ شمار کرنا کہ آدھی رات گزری ہے، کہ آدھی سے کم بھی گزری ہے، کہ آدھی سے زیادہ، یہ نہیں، یہ بعض مفسرین کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، اور بعض حضرات نے یہاں احصاء سے مراد عمل احصاء، یعنی اس طویل وقت اور نیند کے وقت کی نماز پر مداومت نہ کر سکنا مراد لیا ہے۔ لفظ احصاء اس معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث میں اسماء اللہ الحسنی کے بارے میں آیا، کہ من احصاها دخل الجنہ، کہ جس نے اسماء حسنی کو یعنی شمار کر لیا، یاد کر لیا، ٹھیک ہے، تو وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ یعنی یاد کر لیا سے مراد یہاں پر کہ اس کو اچھی طریقے سے نا اس کا احاطہ کر لیا، سمجھ لیا، اس کے جو معنی مفہوم ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو وہ پہچان گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کے اندر پوشیدہ رکھی ہیں، تو جو ناموں کو اچھی طریقے سے سمجھ گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے گی، ایسا شخص جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں لفظ احصاء کا مفہوم بہت سے علماء نے عمل احصاء لیا ہے، یعنی اسماء الہیہ کے مقتضا پر پورا عمل ہونا، جیسے بھی آپ کو بتایا۔ जैसे कि मारुफुल कुरान में आयत व इन तउद्दू निअमतुल्लाहि ला तुहसूहा के तहत में इसकी तफसील लिखी गई है। यानी ये जो आयत है ना, इन तउद्दू निअमतुल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम शुमार करना चाहोगे अल्लाह ताला की नेमतों को तो तुम उनका शुमार नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर भी शुमार करने का मतलब एक तो सादा सा मतलब है कि तुम काउंट नहीं कर सकते अल्लाह की नेमतों को, अनकाउंटेबल नेमतें हैं तुम्हारे ऊपर। और एक और मतलब भी है कि तुम उनका इहाता नहीं कर सकते, तुम उनको यानी समझ नहीं सकते अल्लाह ताला की तुम्हारे ऊपर कैसी कैसी नेमतें। जैसे कि मशाइख से जब हम बातें सुनते हैं तो अंदाजा होता है कि पलक का झपकाना, राइट, हमारे हजरत के बयान में है ना कि एक शाह साहब थे, एक्सीडेंट की वजह से पलकें उनकी कट गई, यानी जिसको आईलिड्स कहते हैं, एक्चुअली नॉट पलकें, आईलिड्स, तो वो उनकी कट गई। अब वो उनको यानी आंख को वो झपका ही नहीं सकते। अब बाहर लगता है कि जी इन आईलेट्स का क्या फायदा होगा, लेकिन उनकी जिंदगी इतनी मुसीबत बन गई इस वजह से कि जिसका एहसास हमें नहीं होता। कोई जो है वो यानी किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से वो लेट के सो नहीं सकते थे, वो बैठे बैठे उनको सोना पड़ता था। तो फिर अंदाजा हुआ कि लेट करके सोना कितनी बड़ी नेमत है। तो हम तो इहाता ही नहीं कर सकते कि हमारे ऊपर अल्लाह ताला की कैसी कैसी नेमतें। तो कुछ हजरात ने फिर ये वाला मफहूम लिया इसका कि तुम इस बात यानी मुदावमत तुम नहीं कर सकोगे, तुम इसका शुमार नहीं कर सकोगे, तुम इसका जो है वो इहाता नहीं कर सकोगे। ये दूसरा मफहूम है लन तो सुहा, लन यानी लन तो सुहू के। अच्छा, किसी, अच्छा आपने जो मैसेज लिखा था कि शेख से किसी मैटर में गाइडेंस लेने में जो इंफॉर्मेशन देनी होती है उसमें हम इफरात या तफरीत से कैसे बचें, हाउ शुड वी डिसाइड व्हाट इज इम्पोर्टेंट। देखें, हर इंसान को ना अपने अहवाल का पता होता है, ठीक है, कि उसको यानी कोई बात अगले बंदे तक कन्वे करने में कितनी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। जितना आपको पता है ना, आपके जहन में बात है ना, तो उतना शेयर कर लेना काफी होता है, ठीक है। हम जिस बात की हम जो कह रहे थे ना, वो हम कह रहे थे, कहते हैं ना 400 BC 420 बनना, राइट, हम 420 बनने की बात कर रहे हैं कि आपको पता है कि ये इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट, लेकिन स्टिल यू आर नॉट शेयरिंग इट, ठीक है, ये 400 BC कहलाते। सही है, तो बस इतना ख्याल रखें कि कोई दानिस्ता तौर पर किसी चीज को जिसको आप समझते हैं कि ये बात भी बतानी चाहिए थी उसको मत रोके, ठीक है। ना दानिस्ता तौर पर कोई चीज बतानी चाहिए थी आपने नहीं बताई, तो भाई उसका तो हमसे हिसाब नहीं लिया जाएगा ना। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, भाई जो चीज हमारे जहन में नहीं आई, हमारे वसत में वो चीज थी या नहीं, तो उसका तो हम को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता ना। इसी वजह से ना इस बात को याद रखें, बहुत यानी याद रखने की, अपने आप को याद कराने की और शदीद इसकी ज़रूरत को महसूस रखें, महसूस करें कि यानी कहते हैं ना वो पिछली दफ़ा जो बात हुई थी फिनाए कल्बी वाली, फिनाए कामिल वाली जो बात हुई थी, वही वाली बात रिपीट करूंगा कि असल में तो सब कुछ अल्लाह ने करना होता है ना। तो इस बात को याद रखें कि शेख से जो मैं मशवरा कर रही हूँ ना, ये अल्लाह ताला के बनाए हुए निजाम की वजह से मैं मशवरा कर रही हूँ। शेख ने जो मुझे मशवरा देना है, ये मशवरा मुझे शेख की तरफ से नहीं मिल रहा है, ये मुझे अल्लाह की तरफ से मिल रहा है, ठीक है। तो अल्लाह ताला को एग्जैक्टली पता है कि मुझे मेरे दिल में क्या चल रहा है इस वक्त, मेरे दिमाग में क्या ख्यालात चल रहे हैं, राइट, सब कुछ अल्लाह ताला को पता है। मैं शेख को के साथ 420 कर सकती हूँ, कितना ही बड़ा शेख क्यों ना हो, पीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी साहब भी क्यों ना हो, आप उनके साथ भी 420 कर सकते हैं। मुझे पता है कि लोग करते हैं, सबको पता है कि लोग करते हैं, ठीक है, हर शेख के साथ लोगों ने किया है, सही है, लेकिन उनके साथ कर सकते हैं, अल्लाह ताला के साथ नहीं कर सकते, ठीक है, अल्लाह ताला के साथ नहीं कर सकते। नबी अलैहि सलाम की हदीस मौजूद है कि तुम मेरे सामने आकर के जो अपना केस पेश करते हो, तो मैं उसके जाहिर की बुनियाद पर तुम्हारे दरमियान फैसला कर देता हूँ, ठीक है, हदीस मुबारक मौजूद है। लेकिन अगर तुम उसके अंदर कोई गलत बयानी का मामला करते हो ना, तो याद रखो कि मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ ना, ये तुम्हारे लिए जहन्नुम का टुकड़ा है जो कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ,
यानी जो मैं फैसला तुम्हारे हक में कर रहा हूं ना, इसको अपने लिए जहन्नुम का टुकड़ा समझो, ठीक है? क्योंकि मुझे तो तुम गलत यानी कंफ्यूज कर सकते हो, मुझसे तुम जो है वो कोई गलत फैसला करवा सकते हो, अल्लाह ताला को तो झूठी बोल सकते हो ना। तो इसी तरीके से ये शेख के साथ भी यही वाला मामला होता है। तो जिसके लिए साजिश ने वर्ड इस्तेमाल किया था, यानी शेख के साथ ट्रांसपेरेंट होना होता है बंदे को, ठीक है? बिल्कुल यानी ट्रांसपेरेंसी जो होती है ना, उसको यही कहते हैं कि भाई जितना आप जिस चीज को आप अहम समझते हैं, जिस चीज को जो है वो जरूरी समझते हैं, वो आप रखें अपने मशवरे के अंदर, और जो चीज आपको पता ही नहीं है उसका तो आपके साथ कोई मसला नहीं है। शेख के साथ नस्बत कैसे मजबूत करें? तो अब ये इतना बड़ा आपने सवाल किया है, मुख्तसर जवाब तो इसका यही है कि भाई जो आपको करने के लिए वो कह रहे हैं तो वो आप उनके साथ। अच्छा, शेख के साथ नस्बत मजबूत करने के ऊपर साजिश ने किसी को एक्चुअली जवाब में कुछ बातें लिखी भी थी, तो मैं उसको देखता हूँ, उस मैसेज को तलाश करता हूँ, और फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं, अगर वो मुनासिब हुआ कि सबके साथ शेयर किया जा सके। ठीक है, चलिए, टाइम ओवर हो चुका है, किसी का कोई सवाल है तो अभी भी पूछ सकते हैं, वरना क्लास का टाइम खत्म हो चुका है, तो जो जाना चाहे वो जा सकते हैं। तो रेज हैंड भी किसी ने नहीं किया है, तो सवाल कोई टाइप नहीं कर रहा, क्लास खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।